चक्रवर्ती भरत का कथानक चल रहा है, अत्यंत रोमांचक कथानक। जन्म से बचपन में, बचपन से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से बढ़ते बढ़ते युवावस्था में आए, और विवाह हुआ पुनः उनके राज्य में, चक्र रत्न उत्पन्न होने के पश्चात चक्रवर्ती की दिग्विजय करने के लिए, चक्रवर्ती पद के लिए दिग्विजय करने के लिए जब वे निकलते हैं, आपने जाना कि किस प्रकार से भरत क्षेत्र के आर्यखंड की राजधानी अयोध्या से भरत महाराज प्रस्थान करते हैं। असंख्य की सेना उनके साथ रहती है, रानियां भी उनके साथ में हैं, सेनापति चक्र रत्न, दंड रत्न, ये सब कुछ साथ में है, और इससे पूरे रास्ते में, दिग्विजय की यात्रा में आनंद ही आनंद आता है, कहीं परेशानी नहीं होती। तो भरत महाराज पूरब दिशा से मागध देव को जीत करके आगे चले, दक्षिण दिशा से पुनः वे आगे चलते हैं, वर्तनु देव को जीतते हैं, और अब पश्चिम दिशा को जीतने की इच्छा से वे अपनी सेना के द्वारा दक्षिण पश्चिम के मध्य भाग अर्थात नैऋत्य दिशा को जीतते हुए निकले। और उस समय उनके घोड़े, हाथी, जो सेना थी, उन सब की शोभा देखने के लायक थी। वनों से होकर नदियों से पहाड़ों को भी पार करते हुए वह सेना कभी थकती नहीं थी। चलते चलते भरत महाराज पश्चिम दिशा के अंदर जब पहुंचते हैं, तो सेना के असह्य संगठनों से अत्यंत पीड़ित हुआ एक सह्याचल पर्वत था। उस सह्याचल पर्वत के वृक्षों के बीच से होते हुए सम्राट चक्रवर्ती भरत जा रहे थे। अब क्या देखते हैं कि वह पर्वत अपने मस्तक पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर, ऐसा लगता था कि अपनी पराजय को स्वीकार करता भरत के पास आ रहा था। अभी नहीं पहुंचे हैं तुम इस गुफा में, अभी वो चल रहे हैं, और उनकी सेना के सेनापति थे जय कुमार, पराक्रमी, अत्यंत पराक्रमी जय कुमार को उन्होंने अपनी सेना का प्रमुख सेनापति बनाया था। आगे आगे जय कुमार को भेज देते थे, और कुछ देर के बाद स्वयं भरत पहुंचते थे। तो एक इसके अंदर प्राचीन काल की कहावत आई है कि पूर्व काल में एक ऐसी पद्धति थी कि जो राजा पराजित हो जाता था, वो सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर, गले में कुल्हाड़ी लटकाकर, अथवा अपने मुंह में तृण को दबाकर विजयी राजा के सामने जाते थे और उनसे क्षमा मांगते थे, उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते थे। ये एक पद्धति रही होगी। जहां जहां भरत जाते थे, वहां वहां इस प्रकार के अनेक अनुभव आते थे। सह्याचल पर्वत को उल्लंघन करके भरत महाराज की सेना विंध्याचल पर्वत पहुंच जाती है। ये सारे पर्वत आज भी नाम सुने जाते हैं विंध्याचल पर्वत के। तो वो पूरब पश्चिम दिशा के कोनों से उप समुद्र में प्रवेश करके, और भरत महाराज का घोड़ा रथ खड़ा हुआ था, ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे मानो दावा नल के डर से समुद्र के साथ मित्रता ही करना चाहता हो। यानी कि ये सब अनेक अलंकारों से सुशोभित वचनों को आचार्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर वर्णन किया है। ये महापुराण ग्रंथ जिनसेनाचार्य ने संस्कृत के श्लोकों में लिखा, और एक पुराने पंडित जी थे पंडित लाला राम जी शास्त्री, उन्होंने शब्दशः उसका अनुवाद किया, जो आज भी हमारे जम्बूद्वीप के लाइब्रेरी में, वहां के पुस्तकालय में विद्यमान है, पुनः उसका दोबारा से अनुवाद पता नहीं क्यों कर दिया पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने, उसमें किंचित कुछ जरा सा आगम विरुद्ध भी परिवर्तन है तो कुछ उसको भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन प्राचीन लाला राम जी शास्त्री के ग्रंथ को हम लोगों ने स्वाध्याय किया, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो महाराज भरत तमाम लोगों के आशीर्वाद लेते हुए मंगल कामनाएं लेकर के और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो आगे जब बढ़ते हैं तो कहा गया कि समुद्र पर्यंत पूर्व दिशा के राजाओं को और वैजयंत द्वार तक दक्षिण दिशा के राजाओं को जीतकर, पश्चिम समुद्र की सीमा तक पश्चिम दिशा के राजाओं को जीतकर, दिक्पालों के समान उन्हें अपने चरणों में नमस्कार कराते हुए तथा मागध वर्तनु और प्रभास देवों को अपने अधीन करके अग्नित देवों को कंपाय मान करते हुए राजाधिराज भरत ने समस्त दिशाओं को शत्रु रहित कर लिया। यानी जब पुण्य का उदय होता है तो सारी साधन सामग्रियां मिलती हैं। भरत चक्रवर्ती के पुण्य की क्या का क्या कहना था? पहली बात, तीर्थंकर महापुरुष के पुत्र। दूसरी बात, उनके आयुषशाला में चक्र रत्न का उत्पन्न होना, नवनिधि 14 रत्नों का प्रकट होना, ये सब उनके विशेष पुण्य के बतलाने वाले, पुण्य के प्रदर्शक चीजें थी। महापुराण के अंदर जिन सेन स्वामी कहते हैं, पुण्या चक्रधर श्रियं विजयिनी महेन्द्रीं च दिव्यश्रियं, पुण्या तीर्थकर श्रियं च परमां नैश्रेयसीं चाश्नुते, पुण्यादित्य सुवत्श्रियां च तसृणा माविर्भवेद् भाजनम् तस्मात् पुण्यमुपार्जयन्तु सुधियः पुण्याचिनेन्द्रागमात्। अर्थात वो कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, पुण्य से दिग्विजय को प्राप्त कराने वाली चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिलती है, पुण्य से ही इंद्र की दिव्य लक्ष्मी मिलती है, पुण्य से ही तीर्थंकर की लक्ष्मी मिलती है और पुण्य से ही परम कल्याण रूप मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। इसलिए हे आयुष्मान भव्यात्माओं, तुम भी जैनागम के कहे अनुसार समीचीन पुण्य का संग्रह करो। यानी जब भरत ने पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा को जीत लिया, उनके पुण्य की सब जगह प्रशंसा हो रही है, ऐसे पुण्य की प्रशंसा करते हुए जिनसेन स्वामी ने इन शब्दों को कहा। अब भरत महाराज उत्तर दिशा को जीतने के लिए उद्यमशील हैं और वे अपनी विशाल सेना के साथ निकलते हैं। तो वहां पर जहां जहां जाते हैं तो सब जगह के राजा आते हैं, कोई उत्तम जाति के घोड़े देते हैं, कोई सफेद सफेद हाथी देते हैं, कोई रत्न, कोई धन संपत्ति, कोई कन्याओं को लेकर के आते हैं कि राजन इन्हें स्वीकार कर लीजिए। तभी तो चक्रवर्ती भरत की 96,000 रानियां थी। ऐसा करते 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 वे उत्तर दिशाओं के राजाओं को वश में करते हुए कुलकर, 16वें कुलकर जिनको कहा है, वे महाराज भरत विजयाद पर्वत के समीप में पहुंच जाते हैं। विजयाद पर्वत, जो लोग हसनापुर में जम्बूद्वीप की रचना को बारीकी से देखने के लिए गए होंगे तो दक्षिण दिशा में वहां खड़े होकर के देखिए, तो वहां पर एक जगह भरत क्षेत्र में आर्यखंड की रचना के रूप में विश्व का नक्शा रखा हुआ है। उसके बाद एक बिल्कुल लंबा लंबा सा दीवाल के सरी का विजयाद पर्वत आता है। उस विजयाद पर्वत के निकट पहुंचते हैं। जरा दिखाओ विजयाद पर्वत। विजयाद पर्वत की तीन श्रेणियां होती हैं, तीन स्टेप हैं उसमें, और तीनों स्टेप पर वहां नगरियां बसी हुई हैं। देखो कितना सुंदर विजयाद पर्वत है जिसमें तीन कटनी बनी हुई है और इस पर नगरियां बसी हुई है। दूसरा, उस तीन कटनी से सहित मणियों के 9 शिखरों से बहुत ही विशाल इस विजयाद पर्वत पर जब वो अपनी सेना को ले जाकर के ठहराते हैं तो वहां पर सेनापति को आज्ञा देते हैं कि उसमें डेरा डाल दो और प्रमुख सेनापति जो जय कुमार हैं उनको आगे भेजते हैं वो वहां सुनते हैं कि अब आगे कैसे जाना है। तो एक तिमिस्र नाम की गुफा होती है, उस गुफा को अपने दंड रत्न से खोलते हैं। वह गुफा बंद रहती है और जैसे ही दंड रत्न से खोलते हैं उसमें से ज्वाला निकलती है। ये ऐसे ऐसे सेनापति भी रत्न है, साधारण व्यक्ति इसको खोल नहीं सकता उस गुफा को। एकदम जय कुमार सेनापति ने दंड रत्न से उस गुफा को खोला, ज्वाला निकलती है। 6 महीने लग जाते हैं उस ज्वाला को शांत होने में। तब तक सेनापति जय कुमार को अन्य आसपास के स्थानों को जीतने के लिए भरत चक्रवर्ती भेज देते हैं और स्वयं सेना के शिविर के साथ वहीं बाजू में विजात पर्वत के निकट में ठहरे हुए होते हैं। पुनः जब ज्वाला शांत होती है, विजात पर्वत की ज्वाला जब शांत होती है, गुफा की ज्वाला, तब उसी गुफा से पूरी अक्षौणी सेना भरत जी की बाहर निकलती और उस विजयान पर्वत के देवता को जैसे ही पता चलता है तो वो आते हैं एकदम आकर के और चक्रवर्ती भरत को विजयान पर्वत पर ले जा करके और वहां उनकी खूब विनय उनका सम्मान करते हुए कहते हैं, हे देव आपको प्रणाम हो। विजयार्थ देव हाथ में रत्नों का हार लेकर, अर्घ लेकर और तमाम उनके लिए आभूषण लेकर के मुकुट कुंडल हार कड़ा बाजूबंद माला आदि से शहीद होकर के स्वयं भी सुसज्जित होकर के और बहुत सारा सामान लेकर के आभूषण लेकर के सम्मान के लिए भरत जी के पास आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मैं इस पर्वत का रक्षक हूँ और इस पर्वत के बीच के शिखर पर रहता हूँ। आज तक मैंने अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर राज्य किया, मैं स्वतंत्र था। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके अधीन हुआ हूँ। मुझे और इस ऊंचे पर्वत को आप विजयार्थ जानिए। यानी अब बताया कि राजन आप जहाँ आए हैं इस पर्वत का नाम है विजयार्थ और हम दोनों ही परस्पर में एक दूसरे के आश्रय से निश्चल हैं। हमें भी कोई जीत नहीं सकता और चक्रवर्ती महाराज आपको भी कोई जीत नहीं सकता। आज मैं आपकी अधीनता को स्वीकार कर रहा हूँ और चक्रवर्ती दिग्विजय का ये पर्वत आधा आधा विभाग कर देता है, इसलिए इस पर्वत का विजयार्थ ये नाम सार्थक हो जाता है। इसलिए हे प्रभु आज आप समझिए मैं आपके बिल्कुल अधीन हूँ। जैसे आपके अनेक सैनिक हैं ऐसे मैं भी आपका सैनिक हूँ। इस प्रकार से वे भरत जी का विनय करते हैं, सिंहासन पर उन्हें विराजमान करते हैं और उनकी सेवा सुश्रूषा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यानी आप भरत जी जो हैं आ गए विजयार्थ पर्वत पर। यहाँ पर 3 खंडों की विजय हो गई, 2 म्लेच्छखंड और 1 आर्यखंड उन्होंने जीत लिया और विजयार्थ पर्वत आ गए। अब वहां कहते हैं कि मैं आदि विजय करके आज विजयार्थ पर्वत पर आ करके आप सबके कारण मैंने ये विजय प्राप्त किया। आप सबके सहयोग से सब लोग उनका भी सम्मान करते हैं और वे सब राजाओं का भी सम्मान करके सबको संतुष्ट करते हैं, तभी तो राजा लोग उनकी अधीनता को खुशी से स्वीकार करते हैं। प्रकरण आता है बीच बीच में कि कहीं कहीं के लोगों को कष्ट होता था तो वो जल्दी से अपना राज्य नहीं देना चाहते थे भरत को। वहां पर उन्हें थोड़ा छोटा मोटा युद्ध भी करना पड़ता था और उसके बाद में विजय प्राप्त करके उन्हें अपने अधीन ही केवल नहीं बनाते थे बल्कि उनका सम्मान करके फिर उन्हें स्वतंत्र कर देते थे और अपने केंद्र शासित प्रदेश की तरह से राज्य की तरह से उस पर अनुशासन करते थे, लेकिन राजा को पूरा निर्देश दे करके वहां के राज्य का संचालन कराते थे। ऐसी पुण्यमयी कथा है राजा भरत की, जो अयोध्या के राजा थे और जिस अयोध्या नगरी में आज हम लोग बैठे हुए हैं। अयोध्या में ज्ञानमती माता की प्रेरणा से उन्हीं भरत चक्रवर्ती भगवान की सिद्ध परमेश जी की प्रतिमा विराजमान हो गई हैं, इसलिए उनका पुण्यमयी चारित्र हम सब पढ़ते हैं सुनते हैं। अब आगे जब चलते हैं भरत जी तो अब सिंधु नदी के पास आ जाते हैं और उनके रथ कि इतनी महिमा थी, इतना चमत्कारी रथ और ऐसे घोड़े थे कि वे समुद्र में से भी, जल में से भी, सिंधु नदी में भी जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि जमीन पर चल रहे हैं। देखो कितना सुंदर सीन दिखाया गया है कि नदी के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि इस नदी को उन्हें पार करके और आगे मिले चखंडों को भी जीतने के लिए जाना है। तो आप ऐसे प्रकरण को सुनते रहिए, और कहने का तात्पर्य होता है कि पुण्य का संचय करना है। जिस पुण्य की महिमा हमारे आचार्यों ने बताई है, संसार के अंदर पुण्य और पाप दो ही तो हैं। देखो पाप किया, शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र का अपमान किया, नरक चले गए, चक्रवर्ती वो भी थे। और पुण्य किया भरत ने, तो पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती चली गई, तो पुण्य फला अरिहंता, एक दिन पुण्य के फल को, अरिहंत अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ऐसे महान पुण्यशाली भरत जी का चरित्र सुनते हुए अपने पुण्य की वृद्धि करते रहें, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद है।